श्रीचैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, कोई बताएगा कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में कोई अगर था तो एक बार बता सकते हैं म्यूट अनम्यूट करके, कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? दत्तात्रेय पे आप बताएंगे कल हमने क्या कहां तक डिस्कस किया था? ओके, दीपक चौधरी पे बता सकते। अच्छा, दत्तात्रेय को बताने बताने वाले
प्रभु जी।
यस दीपक, तू बताइए।
कल हम डिस्कस कर रहे थे भरत महाराज मिस अपने भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और उनको बताते हैं आखिर में कि मिस घर में ये परिस्थिति हुई है, भाई बड़े भाई को वनवास भेज दिया गया है।
हाँ ओके, और कुछ दत्तात्रेय तू आप कुछ बोलना चाहते थे? अनम्यूट करके अभी बोल सकते हैं। ओके,
याद नहीं आ रहा है प्रभु जी।
एक बार एक भक्त ने क्लास भागवतम क्लास दिया, क्लास के बाद मैंने उससे पूछा कि प्रभु जी क्लास कैसा था? तो उसने बोला बहुत अच्छा क्लास था। तो उससे पूछा कि क्लास में क्या था? तो उसने बोला क्लास तो बहुत अच्छा था पर याद नहीं आ रहा क्या था। तो अगर क्लास इतना अच्छा था तो फिर याद रहना चाहिए क्या था, एटलीस्ट कुछ तो याद रहना चाहिए।
प्रभु जी कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मींस भरत महाराज अपने नाना जी के वहां थे, वहां हाँ। से उनको अयोध्या से वहां उनको लेने गए और जो सारथी थे वो वैसे वहां चार, जबकि 8 दिन का रास्ता था, वो 4 दिन में वहां पहुंच गए।
हाँ।
और भरत महाराज को लेकर जब वो लौटे तो उनको वही 8 दिन का समय लगा।
हाँ।
अयोध्या लौटने में।
हाँ।
फिर वो अपनी माता जी से मिले, वो मीन्स
नाइस। दीपक दीपक तू को सब कुछ याद है?
गुड। नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है ऐसा।
तू हैज अ गुड मेमोरी। ओके, तो हमने एंड किया था कि एटलीस्ट भरत और शत्रुघ्न ने या जो भगवान रामचंद्र की माँ है कौशल्या, उनको एटलीस्ट उन्होंने संतुष्ट कर दिया था। और भरत ने 4 प्रकार के शपथ लिए थे जिससे कौशल्या को पूरा विश्वास हो गया था कि भरत जो है वो राम के प्रति लॉयल है। तो एटलीस्ट महल में कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो उनको समझ पाया था, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट उसके आगे आता है कि दोनों भाई बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे अभी एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमेशा दुख मनाता रहे और कैसे दुख को दूर करना है उसका प्रयास नहीं करे तो एक्चुअली वो व्यक्ति कुछ फायदा नहीं होता उसके जीवन में, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ में इरिस्पॉन्सिबल बन जाता है और कलेक्टिव लेवल पे चीजें जो है और बिगड़ती जाती है। तो इसीलिए दुख अगर होता है तो दुख मनाना ठीक है, कुछ समय तक मना सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि फिर उसको हफ्तों हफ्तों तक हम उसी में बैठे हुए हैं और आगे कुछ उसको सॉल्व करने का कार्य नहीं कर रहे। तो दोनों भाई सोच रहे थे क्या करना चाहिए, पीछे से वशिष्ठ मुनि आके उनको समझाते हैं, यही चीज समझाते हैं कि ज्यादा देर तक दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि आपको दुख नहीं करना चाहिए जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उठिए, सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करिए, क्योंकि दशरथ महाराज के शरीर को तेल में रखा गया था, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पुत्र था नहीं, तो उनके शरीर को तेल में रखा गया था। तो दोनों भाइयों ने दशरथ महाराज के शरीर को तेल से बाहर निकलवाया गया और राजा का चेहरा इतना शांत लग रहा था जैसे नींद में सोए हुए, और उनके शरीर से कुछ तेज निकल रहा था, गोल्डन कलर का तेज निकल रहा था। और उस बॉडी को रथ पे रखा गया, और जब भरत ने इस प्रकार से अपने पिता को देखा, पिता की डेड बॉडी को, तो बहुत तेजी से रोने लगे। और वशिष्ठ मुनि जल्दी से आते हैं पास में, और वशिष्ठ मुनि जल्दी से भगो उनके रथ को आगे ले जाते हैं, पालकी को आगे ले जाते हैं। और दशरथ के साथ साथ, राजा दशरथ की जो डेड बॉडी थी उसके साथ साथ अयोध्या के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नागरिक जाते हैं साथ साथ राजा को अंतिम विदा देने के लिए, राजा की विदाई के लिए बहुत सारे नागरिक साथ में जाते हैं। तीनों की तीनों रानियां भी जाती हैं। हालांकि वैदिक समय में ये कस्टम नहीं था कि रानियां मृत बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए जाएं, परंतु यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, विशेष कुछ केसों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों को अंतिम संस्कार के स्थान में जाना अलाउड नहीं होता था, परंतु यहाँ पे दिखाया है कि तीनों रानियां वहां पे गई, उनकी डेड बॉडी को सरकम एम्बुलेट किया, परिक्रमा की, और सारे जो ब्राह्मण थे वो सामवेद का जप कर रहे थे, सामवेद का वहां पे पाठ हो रहा था। और जो कि अभी आप देखेंगे, जब कभी अंतिम संस्कार होता है, बॉडी को जलाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि चारों तरफ चक परिक्रमा की जाती है। तो नॉर्मली परिक्रमा क्लॉकवाइज की जाती है, केवल मृत्यु के समय जो परिक्रमा है वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, बाकी आप देखेंगे तो हर जगह परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है, केवल डेड बॉडी की जब परिक्रमा करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। उसका मतलब होता है कि अभी तक संसार में आसक्ति थी, अभी उस आसक्ति को खत्म करने का समय आ गया है, वो डेड बॉडी जो बॉडी थी उस बॉडी से आसक्ति को खत्म करने का समय आ गया है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज लोग घूमते हैं। और साथ साथ एक मटके में पानी भरते हैं, और जब एक चक्कर पूरा होता है उस मटके में छेद करते हैं, और मटके में जो पानी भरा हुआ है वो पानी जीवन को डिनोट करता है, लाइफ को डिनोट करता है, और मटके में छेद करना मतलब अभी वो लाइफ मटके से निकल गई है। और जब तीन चक्कर पूरे हो जाते हैं तो मटके को बिना पीछे देखे हुए गिरा दिया जाता है, उसका मतलब है कि अभी शरीर को प्रिजर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी शरीर खत्म हो चुका है, शरीर को अभी प्रिजर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद फिर शरीर को जला दिया जाता है। इसके बाद 12 दिन तक शोक मनाया जाता है, 12 दिन तक रिलेटिव्स को अलाउ किया जाता है कि सफिशियंटली रिमेम्बर करें उनके जो प्रेम का संबंध था उस व्यक्ति के साथ। 12 दिन तक चूंकि बॉडी कॉन्सियसनेस बहुत एक्सट्रीम होती है, सभी लोग उस शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए ज्यादा बॉडी कॉन्सियस होने के कारण सभी लोग अशुद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए उन 12 दिन तक भगवान उस घर में विग्रहों की पूजा नहीं होती है, क्योंकि अगर विग्रहों की पूजा करेंगे तो विग्रह की पूजा में ध्यान नहीं होगा, विग्रह की सेवा में ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा उस बॉडी मरे हुए व्यक्ति की तरफ। इसलिए एक प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए कि जितना हम बॉडी कॉन्सियस होते हैं उतने हम इम्प्योर होते हैं, उतने हम कंटेमिनेटेड होते हैं, और जितना हम बॉडी कॉन्सियसनेस से ऊपर जाते हैं उतने हम प्योर बनते हैं। तो 12 दिन का जो हम बोलते हैं ना, 12 दिन तक अशुद्धि रहता है, फिर 13 भी किया जाता है, तो 12 दिन इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि अब 12 दिन हम उसके बारे में सोच सकें, और उस बॉडी के बारे में लगातार सोचने के कारण सभी बॉडी कॉन्सियसनेस में रहते हैं, इसलिए अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए एक बार 13 भी हो जाए तब भी हमें रोते नहीं रहना चाहिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके लिए रोते नहीं रहना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो शरीर आत्मा अभी दूसरे शरीर में जा चुकी है, अभी उसके पीछे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आध्यात्मिक जीवन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये उसका अंतिम अंतिम संस्कार का ये नियम होता है। और 12 दिन खत्म होने के बाद, 13 दिन खत्म होने के बाद पहली बार कई हफ्तों में अयोध्या का कोर्ट चालू हुआ, राज दरबार चालू हुआ। और शत्रुघ्न ने बोला, ये दोनों भाई उस समय बात कर रहे थे, लक्ष्मण और ये भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने सबसे पहले भरत से पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि लक्ष्मण तो बहुत गुस्सा वाला है, बहुत उछलता भी था, परंतु जब इतना बड़ा केस हो रहा था तो लक्ष्मण ने कुछ बोला क्यों नहीं, ये सब इतना जो अन्याय हुआ उसको लक्ष्मण ने क्यों अपोज नहीं किया। लक्ष्मण ने अपने पिता में हमारे पिता को एक ऐसे गलत स्त्री से कैसे प्रभावित हो जाने दिया, शत्रुघ्न ने पूछा। और वो लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे, उसी समय उन्होंने एक साउंड सुना, मंथरा पीछे से आ रही थी, मंथरा एकदम, क्योंकि मंथरा को पता ही नहीं था कि भरत आ चुके हैं, एकदम खुशी में डूबी हुई थी, बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, उसके कुबड़े के ऊपर भी सजावट थी और हाथ में कंगन, पैर में अलग अलग तरीके की डेकोरेशन पहन के मंथरा वहां पे घूम रही थी। जैसे ही किसी गार्ड ने मंथरा को देखा तो मंथरा को खींच के वो शत्रुघ्न के पास लेके आया और उनसे बोला कि यही वो है, यही वो पापी स्त्री है जिसने कि आपके पिता की मृत्यु कराई है, मतलब आपकी माँ को इसने प्रभावित किया जिसके कारण से आपके पिता की मृत्यु हुई और आपके भाई का वनवास हुआ। इसी ने कैकई का मन डिस्टर्ब किया था, इसी ने कैकई को कंटेमिनेट किया था, इसलिए अभी आप इसको मत छोड़िए, इसको खत्म कर दीजिए। ऐसा बोल के उस गार्ड ने मंथरा को इनके हवाले कर दिया और शत्रुघ्न ने जैसे मंथरा को देखा एकदम गुस्सा आया और मंथरा के बाल खींच के वो घसीटने लगे, जमीन पे उनको घसीटने लगे। और मंथरा जितना भी डेकोरेशन था, जो भी उन्होंने ये पहने थे अलग अलग कंगन, ये सब कुछ टूट टूट के गिरने लगे। और किसी ने जाके कैकई को बताया कि मंथरा की इस प्रकार से पिटाई हो रही है। तो कैकई जब आती है, कैकई शत्रुघ्न को भी कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि दोनों बहुत गुस्सा में रहते हैं। तो कैकई जाते हैं भरत के पास और भरत से जब बोलते हैं मंथरा को बचाने के लिए, तो भरत कैकई से बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मंथरा मर जाए, मंथरा को जीवित रहने का कोई हक नहीं है, परंतु अगर मंथरा को हमने कुछ किया तो राम हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं ये श्योर होता कि भगवान राम हमसे नाराज नहीं होते तो मैं तो मंथरा को बहुत पहले मार चुका होता, मंथरा अभी तक जीवित ही नहीं बचती। परंतु अगर किसी स्त्री को मारा जाएगा तो हमारे भाई हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे, इसलिए इसलिए मैं अभी तक मंथरा को जीवित रखा है। जब कैकई ने सुना तो कैकई की आंखों से और आंसू आ गए। इससे एक और चीज पता चलती है कि जो हमने पहले भी देखा था, कुछ समय पहले ही आया था, जब भरत ने अपने आप को राम का इंस्ट्रूमेंट बोला था। तो एक आचार्य ने बताया है गोविंद राज कमेंट्री में कि भरत का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जिसका भाव, जिसकी राग और जिसकी ताल भगवान राम के आधार पर चलती है, जो अपने भाव के द्वारा, अपने राग के द्वारा, अपने ताल के द्वारा राम की सेवा करना चाहते हैं। और भरत को राम के हृदय के अंदर, हृदय की संपूर्ण जानकारी थी, उनको पता था कि भगवान राम की किस प्रकार से सेवा करना है। इसका मतलब है कि उन्होंने राम के मूड और मिशन को इतने अच्छे से समझ लिया था कि पूरे संसार में भरत के जैसा राम का भक्त कोई नहीं मिल सकता है, और उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम के मूड मिशन के आधार पर पूरी तरह से अलाइन कर लिया। इसको बोला जाता है अंतर्मुखी शिष्य। अंतर्मुखी शिष्य इसी प्रकार के होते हैं जो कि आध्यात्मिक गुरु के आधार पर अपने जीवन को अलाइन कर लेते हैं, गुरु की जो अंदर की इच्छा है उसको पूरा, उसको पहले से समझ के उस हिसाब से कार्य करते हैं। और जब भरत ने शत्रुघ्न से इस प्रकार से बोला तो फिर शत्रुघ्न ने मंथरा को छोड़ दिया और मंथरा रोते हुए कैकई के चरणों पर गिर गई। इसके बाद अगले दिन राज्य राज्यसभा चालू होता है। राज्यसभा चालू होने के पहले एक और भरत का टेस्ट होता है। दोनों भाई रात में जब सो जाते हैं तो दूसरे दिन सुबह जब भरत उठते हैं तो सामान्यतः राजा को जगाने के लिए इस प्रकार से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, स्पेसिफिक तरीके से वाद्य यंत्र बजाते हैं। पहले धीमे धीमे बजाते हैं, उसके बाद उसको हाई स्पीड, हाई पिच तक लेके जाते हैं। इस प्रकार से राजा को जगाया जाता था। पहले अभी के जैसे अलार्म घड़ी नहीं होती थी, तो कुछ कुछ लोग होते थे उनको अलॉट किया जाता था कि राजा को जाके जगाना है, वो वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये टेस्ट वशिष्ठ ने भरत के लिए रखा था। सुबह सुबह जैसे दशरथ को जगाया जाता था वैसे जगाने के लिए वो ट्यून बजना चालू होता है, और भरत जैसे ही उस ट्यून को सुनते हैं उठ के अपने कानों को बंद करके चिल्ला के बोलते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, ये सब रोक दो, ये ट्यून की मुझे आवश्यकता नहीं है। और तुरंत वो लोग रोक के चले जाते हैं और वशिष्ठ मुनि पीछे खड़े रहते हैं और वशिष्ठ मुनि भी मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो ये वशिष्ठ मुनि का टेस्ट था कि व्यक्ति जब सोता है तो उसके हृदय की सबसे अंदर की इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। तो वशिष्ठ मुनि ये देखना चाहते थे कि कहीं भरत के हृदय में थोड़ी सी भी इच्छा तो नहीं है राजा बनने की। अगर अगर भरत के हृदय में थोड़ी सी भी इच्छा होती तो इस प्रकार से जब उनको ट्रीटमेंट किया गया था, इस प्रकार से जब उनको बजाया गया था, उनके लिए राजा के जैसा ही बजाया गया था, तो भरत उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करते। परंतु भरत ने नींद में भी अपने इच्छाओं को इतना नियंत्रण कर लिया था भगवान राम के प्रति लॉयल्टी के द्वारा कि सपने में भी वो इस प्रकार से सोच नहीं सकते थे। तो भरत बहुत दुखी हुए, उन्होंने बोला देखो कैकेयी ने कितना कितना नुकसान किया है, ये राज्य बिना राजा के उसी प्रकार से हो गया है जैसे कि कोई बोट है जिसमें कोई राडार नहीं है, किस दिशा में जाना है पता ही नहीं। और वशिष्ठ मुनि संतुष्ट हो गए जब भरत ने ये दूसरा टेस्ट पास किया, वशिष्ठ मुनि को संतुष्ट किया। वशिष्ठ मुनि समझ गए कि भरत ने अपने सबकॉन्सियस इच्छाओं को भी बहुत ध्यान से संभाल के रखा हुआ, दैट मीन्स वास्तविकता में भरत जो थे वो भगवान राम के दास थे। तो यहाँ पे आता है दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तो होते हैं ड्रीमर्स, दूसरे होते हैं अचीवर्स। तो अचीवर्स जो होते हैं वो ड्रीम में भी सावधान रहते हैं, और ड्रीमर्स जो होते हैं वो दिन के समय भी सोते रहते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग होते हैं जो केवल सपना देखते हैं, काम नहीं करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सपने में भी काम करते हैं। तो इसको बोला जाता है एक होते हैं ड्रीमर्स, एक होते हैं अचीवर्स। तो भरत जो है वो अचीवर्स की कैटेगरी में है, राम के प्रति उनका जो प्रेम है वो नींद में या सपने में भी दूर नहीं जाता है, उसी अवस्था में रहते हैं। और जैसे ये लोग उठते हैं कोर्ट रूम में जाते हैं, और कोर्ट रूम में जैसे ये लोग जाके बैठते हैं तो वशिष्ठ मुनि बोलना चालू करते हैं। अभी वशिष्ठ मुनि एक और टेस्ट लेना चाहते हैं, अभी उन्होंने सुबह सुबह एक और टेस्ट लिया है, अभी सेकंड टेस्ट लेना चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि उनको भरत को क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से बताते हैं, अगर भरत थोड़े से भी अगर उनकी इच्छा होती राज्य स्वीकार करने की तो वशिष्ठ मुनि इस तरह से बताते हैं कि भरत पूरी तरह से राज्य स्वीकार कर लेते। वशिष्ठ मुनि क्या बोलते हैं कि सौभाग्य से भगवान की कृपा से राज्य अभी तक राज्य सलामत है, भले ही राजा दशरथ नहीं है और राम और लक्ष्मण भी जंगल चले गए हैं, परंतु राज्य अभी तक सलामत है। परंतु इसको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि राज्य हमेशा ऐसा रहेगा, इसलिए अभी आपको इस राज्य को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि अपना रीजन देते हैं कि क्यों भरत को राज्य स्वीकार करना चाहिए। ये रीजन उसी प्रकार से है जो जैसे अर्जुन जो है वो कृष्ण को रीजन देते हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन पहले अध्याय में रीजन देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रीजन देते हैं, ऐसा लगता है कि सारे सही रीजन है, इसी प्रकार यही रीजन देना चाहिए। तो इसी प्रकार से वशिष्ठ मुनि भरत को टेस्ट करने के लिए कुछ कुछ रीजन देते हैं कि क्यों भरत को राज्य करना चाहिए। एक बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जो कि वेदों को नहीं जानता है, केवल भोग करने में अपने अपने समय को गंवा देता है तो ये एक दुख की बात है। अगर कोई क्षत्रिय जो कि धर्म के नियम को नहीं जानता है और अपने अपने लोगों को प्रेम नहीं करता है तो ये भी एक दया की बात है। दया मतलब डूब मरने की बात, दया नहीं बोलना चाहिए, पिटी, इट इज ए पिटी, मतलब डूब मरने की बात है। अगर कोई वैश्य है वो दान देना नहीं चाहता है और लोगों को मदद करना नहीं चाहता तो ये उसके लिए डूब मरने की बात है। और अगर कोई शूद्र है और उसके उसके अंदर कोई क्षमता है, उस क्षमता के लिए उसको घमंड है तो ये उसके लिए डूब मरने की बात है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानता है तो उसके लिए डूब मरने की बात है। अगर कोई गृहस्थ अपने कर्तव्य, गृहस्थ धर्म के कर्तव्य को भूल जाता है तो ये उसके लिए गलत है। अगर कोई त्यागी तपस्या को छोड़ देता है और भोग में इच्छा प्राप्त करता है तो ये उसके लिए गलत है। परंतु उससे भी ज्यादा गलत है कि एक राज्य जिसका कोई राजा नहीं हो, इन सब वस्तुओं से भी ज्यादा गलत माना जाता है एक राज्य जो बिना राजा के हो। यहाँ से वशिष्ठ बोलना स्टार्ट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हे भरत, राजा दशरथ तो उच्च लोकों में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने पुण्य का जीवन जिया, इसलिए उनके दुखी होने की अभी जरूरत नहीं है आपको, अभी आपको उनके आदेशों को पालन करना चाहिए। राजा दशरथ ने आपको आदेश दिया था कि आपको राजा बनना चाहिए, उन्होंने आपको राज्य सिंहासन दिया है मृत्यु के पहले, इसलिए आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने पिता के आदेशों को पूरा करो, उनके शब्दों को पूरा करो और राज्य को स्वीकार करो। और पिता आपके पिता के लिए उनके राज्यों से, उनके शब्दों से ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं था। उन्होंने राम को भी त्याग कर दिया अपने शब्दों को पूरा करने के लिए, अपने शरीर, अपने जीवन को भी त्याग कर दिया उन्होंने अपने शब्दों को पूरा करने के लिए, इसलिए अपने पिता के कमांड को, अपने पिता के निर्देशों को पूरा करने के लिए आपको परशुराम के आदेश पर चलना होगा, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के कारण अपनी माँ को भी मार दिया था। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर आप राज्य करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपके राजा का यही आदेश था कि राज्य करना है, भरत के लिए राज्य करना है। यहाँ पे जो इंसिडेंट बताया है परशुराम का जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट इस प्रकार से है कि परशुराम ने परशुराम की माँ ने एक बार एक गंधर्व को देखा था जब वो पानी भरने के लिए गई थी, तो गंधर्व को देख के उनके मन में थोड़ी सी इच्छा आई थी गंधर्व का संग करने की। और जब वो वापस आए तो उनके पति को पता चला ऐसी इच्छा, तो उनके पति जो जमदग्नि मुनि थे उन्होंने परशुराम से बोला था कि अपनी माँ का सिर काट दो। उन्होंने इस प्रकार से इच्छा इच्छा उनके मन में आई। तो परशुराम पिता के भी भक्त थे पर माँ के भी भक्त थे, परंतु पिता के आदेश को टाला नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने माँ का सिर काट दिया। फिर पिता इतने खुश हुए, बोले कि अभी तुम क्या चाहते हो? तो परशुराम ने बोला मेरी यही इच्छा है कि आप माता माता जी को फिर से जीवन प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से उनकी माँ फिर से जीवित हो गई, परंतु उनके पिता को पाप लगा था। उस पाप के कारण जमदग्नि मुनि का भी सिर काट लिया गया था, जो काद शिविर अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि मुनि को मार दिया था। शास्त्र बताते हैं इसी पाप के कारण, क्योंकि उन्होंने छोटी सी गलती के कारण अपनी पत्नी के गर्दन काटने का वो आदेश दिया था, उस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी जमदग्नि मुनि की। तो वो इंसिडेंट इसमें बताया है। तो ये बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि आप अगर अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे से राज्य कर सकते हैं। और फिर स्टोरी सुनाते हैं, शास्त्र में से स्टोरी सुनाते हैं। ये एक्चुअली ऐसा है कि आप अपने मन में जो इच्छा है उसको आप पूरा करना चाहते हो, और शास्त्रों में से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ययाति की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। एक बार उनको सांप मिला था कि वो बुढ़े हो जाएंगे, और राजा ने जब ऋषि ने उनको बोला था कि आपका पुत्र अगर आपको जवानी देने के लिए तैयार है तो फिर आप बच सकते हैं, तो ययाति के 5 में से 4 पुत्रों ने तो मना कर दिया था। 5वां पुत्र पुरु जो था उसने अपनी जवानी को पिता से बदल लिया था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ साल बाद पिता ने जब एंजॉयमेंट कर लिया तो उन्होंने जवानी पुरु को दे दी और अपना राज्य भी उसको दे दिया। इसी तरह से भरत, आप अभी आप जो है पुरु के जैसे हैं, यद्यपि आप छोटे हैं परंतु आप पुरु के जैसे हैं। आपके पिता दशरथ ने आपको राज्य दिया है, इसलिए इस राज्य को स्वीकार करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी तो कोई गलती है नहीं, आपकी माँ ने जो किया है तो किया है, आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपके पास तो राज्य आपके भाग्य से आया है, तो आपको कोई पाप लगने वाला नहीं है, इसलिए आओ और इस राज्य सिंहासन को स्वीकार करो। अभी जब इस प्रकार से वशिष्ठ ने बोला तो भरत को इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से, कभी भी वशिष्ठ की बातों को सुन के भरत को गुस्सा नहीं आया था, परंतु अभी इतना गुस्सा आ रहा था वो अपने इमोशन को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि वशिष्ठ लगातार उनके सिर पे पत्थर फेंकते जा रहे हैं ऐसे शब्द बोल बोल के। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भरत की आंखों से आंसू आने लगे, भरत के शरीर में गुस्सा आने लगा और बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए। और उसी समय उन्होंने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करके भगवान राम का स्मरण करना चालू किया। और जैसे ही राम का स्मरण करना चालू किया, भरत अपने आप से अंदर से स्टेबल फील होने लगे। तो भरत को रियलाइज हुआ कि अगर केवल राम को स्मरण करने से कोई व्यक्ति स्थिर हो सकता है, तो क्या राम अगर यहाँ आएंगे तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेबल होगी? केवल उनको याद करने से मैं इतना स्टेबल हो गया हूँ, तो ये गवर्नमेंट क्यों स्टेबल नहीं हो सकती? तो उसके बाद भरत ने फिर उत्तर देना चालू किया। अभी तक आपने वशिष्ठ के तर्क सुने हैं, वशिष्ठ के तर्क बहुत अच्छे हैं, परंतु अभी भरत के आंसर सुनेंगे तो समझ में आएगा, अमेजिंग आंसर्स हैं। भरत का जो धर्म का ज्ञान है वो अनपैरेलल्ड जैसा है। इसलिए अयोध्या में बोला जाता था कि भरत जो है वो राम के समान है, राम से उनकी तुलना की जाती थी। भरत क्या बताते हैं, 5 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। 5 आर्ग्यूमेंट्स में वशिष्ठ के सारे आर्ग्यूमेंट्स को खत्म कर देते हैं। क्या बोलते हैं भरत कि जिस प्रकार से कोई नग्न व्यक्ति के ऊपर कोई भी आप ऑर्नामेंट्स, कोई भी आप आभूषण पहनाओ, सब कुछ यूजलेस है। अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है परंतु आंसर फॉलो करने का के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वो व्यक्ति यूजलेस है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पास कितनी भी भोग करने की सामग्री है वो सब कुछ यूजलेस है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो चाहे वो कितना भी मंत्र करे वो यूजलेस है। और अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो चाहे उसका शरीर कितना भी सुंदर है वो शरीर यूजलेस है। और इसी तरह से अगर मेरे जीवन में राम नहीं है तो चाहे मेरे पास कुछ भी हो मैं उसी तरह से यूजलेस हूँ। ये भरत का पहला आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि एक्चुअली राम, मैं भी राम की संपत्ति हूँ और ये अयोध्या राज्य भी राम की संपत्ति है। तो एक संपत्ति दूसरी संपत्ति को तो राज्य कर नहीं सकती है, हम दोनों के मालिक राम है। तो मेरा जो अयोध्या से कनेक्शन है वो राम के थ्रू है। ये समझ गए आप, जैसे राम, मैं भी राम की संपत्ति हूँ और अयोध्या राज्य भी राम की संपत्ति है। तो आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अयोध्या पे राज्य करूं, परंतु मैं तो खुद ही संपत्ति हूँ। एक संपत्ति दूसरी संपत्ति पर राज्य कैसे करेगी? एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी पे राज नहीं कर सकती, तो दो प्रॉपर्टी के बीच का जो संबंध होता है वो उसके मालिक के द्वारा होता है। तो मैं राज्य से इसीलिए संबंधित हूं क्योंकि मैं राम की प्रॉपर्टी हूं, इसलिए मैं राज्य नहीं कर सकता। और तीसरा बताते हैं कि केवल एक पुण्यशाली व्यक्ति इस राज्य को कर सकता है। मैं ये राज्य, ये सिंहासन, कोई व्यक्ति जो मुझसे बहुत ऊपर है उससे मैं ये सब कैसे छीन सकता हूँ? चाहे वो ज्ञान की बात करें, चाहे इंद्रियों के नियंत्रण की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, चाहे राज्य की शक्ति, राज्य को शासन करने की जो क्षमता है, चाहे ईमानदारी हो, चाहे दया हो, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, राम का स्टैंडर्ड मुझसे बहुत ऊपर है। और जिस जिस क्षण पे आप मेरे जैसे पापी को इस राज्य की गद्दी पे बिठाएंगे, उसी क्षण ये धरती पाताल में समा जाएगी, क्योंकि मेरे जैसा पापी राम के जैसे महान व्यक्ति को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसके बाद बोलते हैं कि आपने तो क्या एग्जाम्पल दिया, ययाति महाराज और पुरु का एग्जाम्पल दिया। उसमें क्या हुआ था, पुरु ने अपने पिता पिता को पिता की खुशी के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया था, परंतु मेरे केस में तो अपोजिट है। मुझे तो राजा बनाने के लिए मेरे माँ ने मेरे पिता को ही मार डाला। तो आप कैसे ये उदाहरण दे सकते हैं, पुरु का उदाहरण? पुरु ने पिता को खुश करने के लिए अपना जीवन दिया और मेरी माँ ने मुझे खुश करने के लिए मेरे पिता का ही जीवन ले लिया। तो ये उदाहरण आप कैसे दे सकते हैं? उदाहरण तो गलत है। और वो फिर बताते हैं कि मैं कैसे एक अच्छा पुत्र कहलाऊंगा अगर मैं ऐसे सिंहासन पे बैठूं जो सिंहासन पे मेरे पिता का खून सना हुआ है, पिता के खून से वो सिंहासन सना है, उस सिंहासन पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तो आपको इस प्रकार से उदाहरण ही नहीं देना चाहिए जिस प्रकार से आप उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद भरत बताते हैं कि अगर इस मैं बता भरत बोल रहे हैं कि अगर इस सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे माँ का काम ठीक है, धार्मिक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कलयुग आ गया है, त्रेता युग के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया है। ये धर्म नहीं बोल सकता है, ये केवल पाप बोल सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा मेरी माँ ने जो किया है वो धार्मिक है, तो वो पापी है, वो कलयुग का व्यक्ति है, त्रेता युग का व्यक्ति नहीं है। अगर इस संसार के सारे लोग, सारे बुद्धिमान लोग भी आ जाके मुझे बोले कि मेरा राजा बनना एकदम ठीक है, तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार से 5 आर्गुमेंट्स देके भरत ने सर्कमएम्बुलेट परिक्रमा किया, राज सिंहासन की परिक्रमा की और राज्याभिषेक के सामान की परिक्रमा की। और भरत वहां से वापस आ गए और बोला कि अगर इस राज्य पे कोई राजा बनेगा तो वो राम राजा बनेंगे, और मैं ये श्योर करता हूँ कि राम राजा बने और मैं जाके राम को जंगल में रिप्लेस कर दूंगा। और मैं जंगल जाऊंगा और राम को वापस लेके आऊंगा और मैं सारे राज्याभिषेक का सामान लेके जाऊंगा और उनको वहीं पे राजा बनाऊंगा। और भरत सभी को फिर आमंत्रित करते हैं, सारे अयोध्या वासियों को आमंत्रित करते हैं कि उनके साथ चलने के लिए। जब ये भरत बोलते हैं तो वशिष्ठ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वशिष्ठ को समझ में आता है कि उन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी चारों भाइयों को, वो ट्रेनिंग अभी तक वेस्ट नहीं हुई है। भरत अभी भी परफेक्ट डिसाइपल है, और भरत ने जो इस प्रकार से आज बोला है वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो वशिष्ठ ये समझ जाते हैं कि इक्ष्वाकु वंश से धर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चारों भाई अभी तक उसी तरह से ट्रेन रहे हैं जिस प्रकार से मैंने उनको ट्रेन किया था। और भरत के शब्द सुन के पूरा अयोध्या खुश हो जाता है, अयोध्या के सारे सिटीजन्स खुश हो जाते हैं। और भरत सुमंत्र को बोलते हैं कि पूरी आर्मी को मोबिलाइज करिए और जंगल तक जाने का रास्ता बनाइए। कई दिन से अयोध्या के लोग भगवान राम के जाने के जहर से परेशान थे, परंतु भरत के शब्द शब्द जो थे वो ऐसे मंत्र के रूप में आए कि जिससे कि उनका जहर खत्म होने लगा। और अयोध्या के लोग इस प्रकार से बोलते हैं, एक अयोध्या के नागरिक बोलते हैं कि भगवान राम के प्रति प्रेम का पर्सोनिफिकेशन भरत है, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप भरत है। दूसरे ने बोला कि कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो आपको घृणा करेगा, हालांकि आपकी माँ ने गलत किया, परंतु कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो आपको घृणा करेगा। आप तो इतने महान हैं कि आप किसी भी वंश को पवित्र कर सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि जैसे सांप के सिर के ऊपर जो मणि होती है, उस सांप की गलती के कारण उस मणि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से आपकी माँ उस सांप के समान है, आप उसके ऊपर मणि के समान है, आपकी मणि की चमक उसी प्रकार से फैल गई। और पूरे देश में, पूरे अयोध्या में ये न्यूज़ फैल गई कि जो भी स्त्रियां थी उन्होंने अपने पति को बोला कि भरत के साथ जाइए, राम को वापस लेके आइए। सभी लोग अपने अपने घर से निकलने लगे, अपने कंधे पे बैग लेके, एक ही मिशन पे थे कि राम को फिर से अयोध्या वापस लेके आना है। तो यहाँ पे भरत का तीसरा टेस्ट था, वशिष्ठ मुनि ने जो उनका टेस्ट लिया वो उनका थर्ड टेस्ट था। इस टेस्ट को क्या, जब भरत ने रियलाइज किया कि वशिष्ठ उनके डिटर्मिनेशन को चेक कर रहे हैं, उनको एक आसान रास्ता प्रदान कर रहे हैं, तो भरत ने तुरंत उस टेस्ट को पार किया और रियलाइज किया कि भरत इमोशनल नहीं है, और लॉजिकली उन्होंने इवेल्युएट किया। उसके बाद भरत ने इस प्रकार से आर्गुमेंट दिए कि वशिष्ठ और पूरे अयोध्या के वासी कन्विंस हो गए कि भरत राम के लॉयल सर्वेंट। इसके बाद अगले दिन से ही हजारों की संख्या में लोग रोड बनाने के लिए आगे आए, मैकेनिक्स, एक्सकेवेटर, प्लास्टर, कारपेंटर, सभी लोग आके रोड का निर्माण करने लगे, और बहुत जल्दी रोड बन गई, निषाद राज, कोसल राज्य तक रोड बन के कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अयोध्या, अयोध्या से सबसे बड़ी यात्रा निकलती है। इस यात्रा का डिस्क्रिप्शन रामायण में बहुत बड़ा आता है, 9,000 हाथी, 60,000 रथ, 10,000 सिपाही और लाखों लोग भरत और शत्रुघ्न के रथ के साथ निकल रहे थे। ऑलमोस्ट पूरा अयोध्या साथ में जा रहा था राम को वापस लाने के लिए, सारे के सारे मिनिस्टर भी साथ में थे, तीनों रानियां भी साथ में थी, और इन सभी के साथ साथ अयोध्या के वासी चल रहे थे, सामान्य वासी, कोई भी कुछ भी कार्य करते थे, वॉशरमैन, फिशरमैन, स्टोन वर्कर, ब्राह्मण, व्यापारी, सभी लोग उसमें साथ में जा रहे थे। और सभी के मन में एक ही विचार था कि कब हम पहली बार राम का दर्शन करेंगे, कब हमारे हृदय को हम संतुष्ट करेंगे भगवान राम का दर्शन करके। और सभी लोग अयोध्या की पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे थे, जैसे जैसे उनका, जैसे जैसे वो पैर से आगे चल रहे थे, और भरत का माइंड भी चल रहा था, भरत और ज्यादा सोच रहे थे राम के बारे में। और जैसे भरत सोच रहे थे तो उनको ध्यान आया कि राम तो इस प्रकार से रथ में नहीं जा रहे होंगे, और जैसे ही उनको ध्यान आया कि राम हो सकता जंगल में पैदल चल रहे होंगे, तो भरत तुरंत रथ से उतर के पैदल चलने लगे, और भरत को देख के बाकी लोग भी पैदल चलने लगे। परंतु ऐसा पैदल चलने से स्पीड कम हो गई, तो केवल एक व्यक्ति को परेशानी हुई, कौसल्या माँ को। कौसल्या माँ ने अपना जो पालकी था उसको फास्ट आगे चला के भरत के पास पहुंच के बोलती हैं कि एक्चुअली मेरे पुत्र, अगर आप पैदल चलेंगे तो सभी लोग आपको फॉलो करेंगे, ऑलरेडी ये सभी लोग दुख से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप उनको और परेशान और थकाना क्यों चाहते हैं, अगर पैर से इतने लंबे डिस्टेंस चलेंगे तो बहुत थक जाएंगे, ऑलरेडी अयोध्या के वासी फिजिकली और मेंटली बहुत थके हुए हैं, और दूसरा राम के पास हम कैसे पहुंचते हैं वो जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है कि कितने जल्दी हम उनके पास पहुंचते हैं, तो इस सिचुएशन में टाइम ज्यादा जरूरी है, कैसे पहुंच रहे हैं वो जरूरी नहीं है, इसलिए आप अपने रथ पे बैठिए और जर्नी चालू करिए। तो कौसल्या माँ की बात मान के भरत और शत्रुघ्न दोनों रथ पे जाते हैं और जर्नी कंटिन्यू होती है, साइलेंट जर्नी चल रही है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। इसमें आता है रामायण में कि अगर वो चलते हुए नहीं दिखाई देते तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता था कि कोई दीवार पे पेंटिंग के समान है। जब ये लोग गंगा पहुंचते हैं तो भरत रुकना, गंगा को पार करने के पहले रात में वहां रुकना चाहते हैं श्रृंगवेरपुर में, और वहां पे टेंट बनाए जाते हैं और लोग अपना लगेज बैग करते हैं, मेकशिफ्ट टूर्नामेंट जैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है श्रृंगवेरपुर में, जो भगवान राम के मित्र निषाद राज अपने सिपाहियों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना देख के निषाद राज को डाउट हुआ था कि भरत किस लिए यहाँ पे, किस लिए आ गए। तो निषाद को ऐसा लगा कि शायद ये लोग राम को जंगल में मारना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया, उनसे बोला कि इन लोगों का जो डिटर्मिनेशन है राम को खत्म करने का, उससे ज्यादा बड़ा डिटर्मिनेशन है मेरा राम को बचाने का, और क्यों इतनी बड़ी आर्मी लेके भरत आएंगे, भरत के मन में कुछ ना कुछ पाप है इसलिए वो इस प्रकार से इतनी बड़ी आर्मी लेके आए। और निषाद बोलते हैं कि मैं अपना जीवन जीवन खत्म करने के लिए तैयार हूं, अपने मित्र की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने बोला कि अपने रथ को तैयार करो, अपने धनुष को तैयार करो और ब्लड की फीस्ट के लिए तैयार हो जाओ। 500 नाव इस प्रकार से गंगा में होनी चाहिए कि ये लोग गंगा पार नहीं कर पाए, सबकी लाशें गंगा में गिरना चाहिए। और निषाद राज बोलते हैं कि उनको दो तरफ से समस्या है, एक तो गंगा इतनी इतनी बड़ी नदी है और ये उनका इलाका नहीं है, पीछे की तरफ जंगल है आगे गंगा है, और गंगा के पानी में हम उनको खत्म कर देंगे, अयोध्या का एक भी व्यक्ति वापस नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से उन्होंने बोला और वहां पे छुप गए सभी लोग। परंतु साथ साथ उसने बोला कि ये सब तभी जरूरत होगा कि अगर भरत वास्तविकता में राम के प्रति शत्रुता रखते हैं, अगर राम के प्रति वो प्रेम करते हैं तो हम इन्हीं सब नाव को लेके उनको गंगा पार करा देंगे। तो मैं पहले भरत के पास जाऊंगा और ये टेस्ट करूंगा कि ये भरत किस लिए यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही मेरा आदेश मिले उस वैसे ही आप वहां पे आइएगा, वैसे ही आप अपना कार्य चालू करिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार जब हम कोई चीज सोचते हैं तो गुस्से में हम कई बार बेकाबू हो जाते हैं और सोचने समझने की क्षमता हमारी चली जाती है। परंतु निषाद राज में ये बहुत अच्छा गुण है कि हालांकि गुस्सा में थे परंतु उसके बाद भी उन्होंने बोला, अननेसेसरी उस गुस्सा को ऐड नहीं किया। हो सकता है ऐसा करते कि अभी तीर चलाना चालू कर दो, परंतु उन्होंने बोला कि मैं पहले जाके टेस्ट करूंगा और अगर भरत के का व्यवहार उस तरह से है तभी हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे। तो ये लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि एंगर का ओवरडोज खाने से बचें, एंगर को ज्यादा अपने पास नहीं लाएं, उसी तरीके से रोकें जैसे कि हेल्दी व्यक्ति ज्यादा खाने से अपने आप को रोकता है। हमारे सिस्टम में अगर ज्यादा गुस्सा जाता है तो व्यक्ति रजोगुण में चला जाता है, इसलिए गुस्से को कभी भी अपने सिस्टम में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। और ऐसा बोल के निषाद राज आगे आते हैं जहाँ पे भरत है, और निषाद राज को पहले सुमंत पहले देखते हैं, और सुमंत भरत को बताते हैं कि निषाद राज आए हुए हैं। और जैसे भरत को पता चलता है कि निषाद राज भगवान राम के बहुत प्रिय मित्र हैं, तो भरत तुरंत उनके पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए। और निषाद राज जैसे ही भरत को पहली बार देखते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि भरत के हृदय में कोई गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि भरत का चेहरा राम से बहुत कुछ मिलता जुलता था और उनकी आंखों के नीचे जो गड्ढे थे उससे पता चल रहा था कि राम के कारण दुख में कितने समय से वो रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं। और जब उनको इस तरह से लगा तो गुह ने विनम्रता से उनसे पूछा कि मैं श्रृंगवेपुर का राजा गुह आपका सब्जेक्ट हूं, और ऐसा बोल के उन्होंने भरत को गिफ्ट प्रदान किया। और भरत ने तुरंत गुहा से ये प्रश्न किया कि हे मेरे मित्र, हमें बताइए कि भारद्वाज मुनि के आश्रम हम कैसे जाएंगे, इस नदी को पार करना आवश्यक है कि इसके अलावा भी कोई और रास्ता है। तो गुहा ने बताया कि केवल मदर गंगा माँ ही आपको भारद्वाज मुनि के आश्रम तक लेके जा सकती है, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है, ये नदी उन लोगों के लिए कठिन लगती है जिन्होंने इनका आश्रय नहीं लिया है। जैसे जो मछली नदी में रहती हैं तो ये तो उनका घर है, और हम जैसे लोगों के लिए ये हमारी माँ है जो कि हमें मेंटेन करती है। मेरे पास 500 नावें हैं, उन नावों से हम आपको इस नदी के पार ले जाएंगे, परंतु उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और डायरेक्टली वो प्रश्न पूछते हैं, वो डिप्लोमेसी कर सकते थे परंतु डायरेक्टली पूछते हैं, भरत को देख के पूछते हैं कि क्या आप राम को अटैक करने जा रहे हैं, क्या आप राम को मारना चाहते हैं, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं। और जैसे ही भरत ये प्रश्न पूछते हैं, भरत इस प्रश्न से एक्चुअली परेशान हो चुके थे क्योंकि जो उनसे मिलता था वो ये प्रश्न पूछता है। एक बार अयोध्या उनसे ये प्रश्न अयोध्या में कौशल्या ने उनसे ये प्रश्न पूछा था, अभी फिर से ये निषाद उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके बाद भारद्वाज मुनि भी उनसे यही प्रश्न पूछते हैं। तो भरत ने जैसे ये प्रश्न सुना तुरंत भरत का फेस चेंज हो गया और भरत एकदम दुखी होके एकदम सेल्फ डिस्गस्टेड हो गए और अपने अपने मुंह को अपने हाथ से छुपा के बोलते हैं कि आपने मुझे एक चाकू मार दिया है, क्यों क्यों सभी लोग मुझे डाउट करते हैं, सभी लोग मेरे ऊपर डाउट क्यों करते हैं, राम मेरे बड़े भाई हैं और अभी तो वो मेरे पिता के जैसे हैं, मैं उनके बारे में गलत क्यों सोचूंगा, मेरे एब्सेंस में जो कुछ हुआ उस सबको मैं सही करना चाहता हूँ, उनको मैं इस अयोध्या के राज्य पे बिठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जब इस प्रकार से भरत ने बोला तो निषाद राज समझ गए भरत का जो इंटेंशन था उसको उन्होंने रियलाइज किया और भरत से माफी मांगा और उनसे बोला कि आप धन्य हैं, ऐसे आप हजारों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और फिर निषाद राज बोलते हैं एक्चुअली भगवान राम ने जो किया है वो उतना बड़ा नहीं है जितना आप करना चाहते हैं। भगवान राम ने तो अपने राज्य को त्याग किया क्योंकि उनसे बोला गया था, उन्होंने अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए राज्य त्याग किया। तो राम ने जो किया वो तो पिता की आज्ञा के लिए किया, परंतु आपको तो पिता ने राज्य भोग करने के लिए किया है, बोला है, तब भी आप उस राज्य को त्याग कर रहे हैं। तो आपका जो ये त्याग है एक्चुअली राम के त्याग से भी बड़ा है, क्योंकि आपको तो बिना कोई मेहनत के राज्य मिल गया था, और आपको कौन ब्लेम करेगा राज्य लेने से। तो आप जो राम को ये वापस ले जाना चाहते हैं ये बहुत महान है, महान कार्य है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, एक चीज सीखने के लिए मिलता है कि भरत आसानी से ऐसा बोल सकते थे कि वो तो राम के आदेश का पालन कर रहे हैं और पिता के आदेश का भी पालन कर रहे हैं राज्य को स्वीकार करके, और शांति से स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि राम ने भी जाने के पहले बोला था कि भरत को राज्य मिलना चाहिए, और भरत को तो पिता ने भी बोला था कि क्योंकि माँ की इच्छा थी तो पिता का आदेश जैसा था। तो भरत तो आसानी से बोल सकते थे कि वो तो राम का भी आदेश पालन कर रहे हैं, पिता का भी आदेश पालन कर रहे हैं और सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो परंतु ये ऐसा नहीं है, निषाद राज ने बोला कि राम के लिए जो आज्ञाकारिता थी वो भरत के लिए टेम्पटेशन के जैसा था, लोभ के जैसा था। तो राम के लिए पिता का आदेश पालन करना आज्ञाकारिता था, परंतु वही आदेश अगर भरत पालन करते तो उनके लिए वो आज्ञाकारिता नहीं था, वो उनके लिए लोभ के जैसा था। इसीलिए सेम चीज के लिए दोनों ने दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। राम पिता का आदेश मान के जंगल चले गए, और भरत ने पिता का आदेश नहीं माना और राम को जंगल लेने के लिए चले गए। अगर भरत बोलते कि मैं भी पिता का आदेश मानता हूँ और राज्य स्वीकार कर लेता हूँ, तो भरत के हिस्से में वो पाप कहलाता, हालांकि राम के हिस्से में पिता का आदेश मानना आज्ञाकारिता था, परंतु भरत के हिस्से में पिता का आदेश मानना पाप के समान था। तो एक ही सिचुएशन में दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। और जब इस प्रकार से भरत को जब वो प्रशंसा कर रहे थे तो भरत बहुत अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि जब भरत की बुराई की थी तो भरत दुखी हुए थे, परंतु उससे भी ज्यादा वो दुखी हुए जब उनकी प्रशंसा हुई। तो सामान्यतः जो एडवांस भक्त होते हैं उनको प्रशंसा बहुत खराब लगती है, वो प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और सामान्य लोग जब होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनको लगता है कि प्रशंसा होना चाहिए, वो प्रयास करते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे। कई बार हम कुछ कुछ अच्छा कार्य करते हैं, फिर लोगों को जाके बताते हैं कि कम से कम कोई तो बोले कि हाँ आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो अंदर से इच्छा होती है प्रसन्नता की, और बाहर जब कोई हमें प्रशंसा करता है तो बोलता है नहीं नहीं प्रभु जी मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रभुपाद ने सब कुछ किया। अंदर अंदर हम सोचते हैं कि मिल गया, अभी एक ने तो प्रशंसा कर दी कम से कम। तो ये नियोफाइट नेचर होता है कि अंदर हमें प्रशंसा की इच्छा होती है कि कोई मुझे मिल जाए प्रशंसा करने वाले। जितना व्यक्ति एडवांस होता जाता है उतना वो प्रशंसा से दूर भागता है। चूंकि भरत पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, तो उनको जो जब उनको आरोप लगाया गया तब भी उनको दुख हुआ, और जब उनको प्रशंसा की गई तब भी उनको दुख हुआ, इसलिए उन्होंने टॉपिक बदल दिया। और इस प्रकार से वहां पर रात हो गई और भरत अपने टेंट पे लेट गए। जब वो सोने के लिए जा रहे थे उनको नींद नहीं आ रही थी, लगातार बिस्तर पे अपना टर्न बदल रहे थे, और जब उनको नींद नहीं आई तो वो उठ के वापस आए, बाहर घूमने के लिए आए। और जब वो बाहर आके देखते हैं तो निषाद राज को वहां पे बैठा हुआ देखते हैं, और निषाद राज खाली आसमान की तरफ देख रहे हैं। उसके आगे जब वो जाते हैं तो शत्रुघ्न को देखते हैं, तो वो खुद भी दुखी थे और निषाद राज भी दुखी थे, शत्रुघ्न भी दुखी थे। इसलिए भरत अभी और दुख नहीं चाहते थे, वो अभी ज्ञान की तलवार और ज्ञान की रोशनी को चाहते थे। इसलिए वो निषाद राज के पास जाते हैं और उनको बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि भगवान रामचंद्र जब आए थे तो उनकी विजिट को आप डिस्क्राइब करिए, राम सीता और लक्ष्मण जब यहाँ पे आए थे तो क्या क्या उन्होंने किया था। और गुहा उनको सब कुछ बताते हैं, कौन कौन से इमोशन के साथ बताते हैं, जैसे राम आए थे और वहां से लेके उनके जाने तक। और फिर निषाद राज बताते हैं कि उन्होंने निषाद राज ने किस प्रकार से लक्ष्मण के साथ बात की थी, लक्ष्मण भी उस रात में रेस्ट नहीं कर रहे थे और निषाद राज भी उस रात में जगे थे राम और सीता की रक्षा करने के लिए। तो जब इस प्रकार से निषाद राज बोलते हैं कि राम और सीता की रक्षा करने के लिए वो भी जगे थे और लक्ष्मण भी जगे थे, तो भरत समझ जाते हैं कि निषाद राज को लक्ष्मण पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब निषाद राज जब लक्ष्मण राम के चारों तरफ घूम रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए, तो निषाद राज लक्ष्मण पे निगाहें लगाए हुए थे, क्योंकि निषाद इनको डाउट था कि हो सकता है एक भाई ने उनको वनवास भेजा है, दूसरा भाई वन में ही उनको मार डालेगा। तो लक्ष्मण राम और सीता की रक्षा कर रहे थे सर्किल में घूमते हुए, उस सर्किल के चारों तरफ थोड़ा और दूर जाके निषाद राज घूम रहे थे लक्ष्मण को, लक्ष्मण के चारों तरफ देखते हुए। और निषाद राज जब इस प्रकार से घूम रहे थे तो निषाद राज के सिपाहियों को लगा कि हमारे मालिक ये क्यों कर रहे हैं। तो निषाद राज के सिपाहियों ने सोचा कि शायद हमारे मालिक भी राम को मारना चाहते हैं। तो वो अपने निषाद राज से थोड़ा दूर सर्किल बना के वो लोग घूम रहे थे। तो बीच में पेड़ के नीचे राम और सीता सो रहे थे, उसके चारों तरफ लक्ष्मण घूम रहे हैं, उसके चारों तरफ निषाद राज घूम रहे थे, उसके चारों तरफ उनके सिपाही घूम रहे थे। तो पूरी रात कोई सोया नहीं, केवल राम और सीता सोए, बाकी सभी लोग जागते रहे उनको जगाने के, उनको बचाने के चक्कर। तो ये इंसिडेंट एक्चुअली निषाद राज ने बोला नहीं, परंतु भरत समझ गए। इसमें आता है कि निषाद राज को गहन गोचर बोला जाता है, जिनके शब्दों को समझ पाना बहुत कठिन है, परंतु भरत का एक और नाम है अप्रमेय। भरत की बुद्धि इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी वस्तु को समझ सकते हैं। तो जब भरत, जब गुहा ने ऐसा बोला कि गुहा भी रात भर जग रहे थे, तो भरत समझ गए कि गुहा रात भर इसलिए जगे थे क्योंकि वो उनको लक्ष्मण पर भरोसा नहीं था। और भरत ने डायरेक्टली गुहा से बोला भी कि आप इसलिए जगे थे। और वो उनको बहुत अच्छा लगा कि राम, गुहा का राम के प्रति इतना ज्यादा प्रेम था कि वो राम की रक्षा करना चाहते थे, लक्ष्मण और भरत से भी राम को बचाना चाहते थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे राम को, गुहा का इतना ज्यादा प्रेम था राम के प्रति। और जिस प्रकार से गुहा ने फिर सब कुछ बताया, उससे भरत को और ज्यादा दुख हुआ। और भरत फिर देखना चाहते थे उस स्थान को जहां पे सीता और राम सोए रात में। और जब गुहा वहां पे लेके गए, जो उन्होंने घास का जो बेड बनाया था, तो उसको देख के भरत की आंखें एकदम, ऐसा लग रहा था कि आंखें अपने स्थान से बाहर आना चाहती। भरत को ऐसा लग रहा था कि और कितना ज्यादा दुख देखना पड़ेगा। एक पिता का डेड बॉडी मैंने देखा, अपने भाई की तपस्या को देखा, एक हमारे जो माँ है कौशल्या माँ, उनके दुख को देखा, और अपनी खुद की माँ के ऐसे पाप कर्मों को देखा, ये सब कुछ कितना ज्यादा कठिन था। और उस घास के बिस्तर के बगल में बैठ के भरत रोने लगे कि आज मैं समझ पा रहा हूँ कि समय की शक्ति कितनी, समय कितना शक्तिशाली है। ऐसे जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, जो हमेशा इतनी लग्जरी में रहते थे, आज वो इस जगह पे सो रहे हैं। और फिर भरत बोलते हैं कि आज भी, अभी भी हम लोग अयोध्या में नहीं है, परंतु अयोध्या अभी भी सुरक्षित है। सारे के सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुके, परंतु अयोध्या सुरक्षित है, क्योंकि राम अभी जहां पे हैं वहां से बैठे बैठे वो मेंटली अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा शक्ति है राम की कि इतने समय से कोई राजा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तब भी अयोध्या अभी सुरक्षित है। राम उसको केवल अपने मन से अयोध्या को सोच के उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे राम इस प्रकार से तपस्या में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कोई कैसे समझ सकता है कि समय शक्ति कैसे कार्य करती है। और भरत फिर बोलते हैं कि वास्तव में लक्ष्मण और सीता बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली थे कि एटलीस्ट राम के साथ में थे और राम का संग उनको प्राप्त हो रहा था। और ऐसे बिस्तर को देख के मैं कैसे कोई भी सुख प्राप्त कर सकता हूँ। और उसी दिन भरत फिर एक और शपथ लेते हैं। बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक राम वापस नहीं लौटेंगे, तब तक मैं सॉफ्ट बेडिंग पे नहीं सोऊंगा, तब तक मैं ऐसे कोई बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं इसी तरह से घास पे सोऊंगा जैसे मेरे भाई सो रहे थे, उसी तरह से मैं घास पे सोऊंगा। और मैं कोई भी अच्छा भोजन नहीं करूंगा, केवल जड़ और फल खाऊंगा, जो वन में जैसे खाया जाता है वही खाऊंगा। और मेरे भाई ने जिस प्रकार से अपने राजसी वस्तुओं का त्याग कर दिया था, उसी तरह से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बालों में जटाओं को धारण करूंगा और जिस प्रकार से वनवासी ड्रेस होता है वो ड्रेस पहनूंगा। और 14 साल तक मैं किसी महल में नहीं रहूंगा, किसी सिटी में नहीं रहूंगा, जंगल में निवास करूंगा। ये शपथ भरत ने लिया। इसी के कारण भरत फिर अयोध्या में वापस नहीं गए, नंदीग्राम में उन्होंने राज्य किया था। वापिस लौटने के बाद भी वो अयोध्या सिटी के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। तो जब तक भरत ने ये शपथ ली, तब तक बहुत सारे अयोध्यावासी वहां पे आ गए थे। और जैसे ही भरत ने तीनों की तीनों शपथ कंप्लीट की, भीड़ के पीछे कोई एक व्यक्ति बेहोश हो गया। कौन था वो? कैकई। कैकई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खराब कंडीशन आएगी। कैकई ने जो परफेक्ट मास्टर प्लान बनाया था, वो पूरा का पूरा मास्टर प्लान उनके खिलाफ ही लागू हो गया। जो भी दुख वो राम को देना चाहते थे, सारा का सारा दुख उनके पास ही लौट के आ रहा था। तो ये कर्म का नियम होता है। कैकेयी ने जो चीज राम के लिए प्लांट की वो सारा का सारी चीज उनके ऊपर ही आई। और ये सब बोलने के बाद सब भरत अपने टेंट पे आ गए, परंतु अभी सोने की इच्छा ही भी नहीं थी, केवल वो राम को पूरे दिन पूरी रात भर राम को याद करते हुए। और जैसे ही भरत वहां से गए तो अयोध्या के सारे लोग उस स्थान पे आ गए और जहाँ पे राम और सीता ने एक रात बिताई थी, और वो सभी उस स्थान को प्रणाम किए और उसको परिक्रमा की। वो स्थान अभी एक तीर्थ स्थान के जैसा हो गया था। तो ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पे महान लोग, पवित्र लोग महान कार्य करते हैं, ऐसा स्थान पवित्र स्थान कहलाता है। और पवित्र स्थान ऐसा होता है, पवित्र कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस करना चाहता है और माफ करना चाहता है, क्योंकि भगवान राम और सीता देवी उस घास के बिस्तर पर सोए, उन्होंने अपने दुख का त्याग किया केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए वो स्थान और ज्यादा पवित्र बन गया, और वो स्थान अभी भी पवित्रता का है। जब भी कोई उस स्थान पर जाता है तो उससे सबक मिलता है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन हमेशा दूसरे के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए और दूसरे को क्षमा करना चाहिए, हमेशा दूसरे की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। एक्चुअली सीता माँ को इस प्रकार से एक और आश्चर्य हुआ था कि ये इनके वंश में कभी कोई अपने लिए कुछ करता ही नहीं, हमेशा दूसरे के लिए ही काम करता है। सीता माँ ने बोला था, ये सब भाई कौन सी मिट्टी से बने हैं, सबके सब दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कोई अपने लिए कुछ करने ही नहीं चाहता है। तो अयोध्या एक ऐसा मॉडल है कि अयोध्या का मॉडल सेक्रीफाइस पे आधारित है। केवल एक बार कैकेयी ने सेल्फिश होकर कार्य किया और उसके कारण से कैकेयी का नाम पूरे अयोध्या में हमेशा के लिए, पूरे रामायण ग्रंथ में हमेशा के लिए ब्लैक स्पॉट के नाम से आता है। बाकी अयोध्या का मॉडल ही वो है कि वहां पे कोई व्यक्ति अपने लिए कोई सुख चाहता ही नहीं, हमेशा दूसरे के लिए सुख प्राप्त, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहता है। तो ऑलरेडी 9 बज चुका है। अभी हम बहुत कुछ बाकी हैं, पता नहीं कल एक दिन में कैसे कंप्लीट होगा। अभी भरत पहुंचे नहीं है वहां तक, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद राम, भगवान रामचंद्र एक मैनेजमेंट का लेसन भी देते हैं कि किस प्रकार से अच्छे से राज्य करना चाहिए। उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर भरत वापस आते हैं। तो पता नहीं कल कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं। कल थोड़ा फास्ट जाएंगे, इतना इतना धीमे नहीं जाएंगे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना
है? नहीं तो प्रभु जी, एक दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट डे।
हाँ, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसके अगले दिन कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर उसके अगले दिन करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ओके, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न?
मानसिक रूप से तो कहीं नहीं बन जाएगा, लेकिन शारीरिक जो शरीर के रूप से हालांकि उन्होंने तो उसको एक तपस्या के रूप में भगवान के
ओके ओके यहाँ पे एक प्रश्न है कि कैकेयी को तो दंड मिला मानसिक रूप से, परंतु ये 10 भरत को, लक्ष्मण को, सीता को, सबको सबको तपस्या क्यों करना पड़ा, उनको क्यों दंड मिला? इसका उत्तर है कि भरत भी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। भरत तो भगवान के अंश है, विष्णु तत्व है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी विष्णु के अवतार है। राम जो है वासुदेव के अवतार है, भरत लक्ष्मण जो है शंकरसन के अवतार है, भरत प्रद्युम्न के अवतार है और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है। तो सभी विष्णु तत्व हैं और सीता माता लक्ष्मी देवी हैं। तो कैकेयी को भी, हालांकि पाप, कैकेयी भी उसी लीला के हिस्सा है। कैकेयी को देवताओं ने इस प्रकार कैकेयी को कार्य कराया, मंथरा को इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे कि रावण का विनाश हो सके, क्योंकि अगर भगवान रामचंद्र अयोध्या से नहीं जाते तो राक्षस वंश खत्म नहीं होता। तो इसलिए कैकेयी भी उसी मास्टर प्लान के हिस्सा थी, सब कुछ लीला के ही हिस्सा थे। लीला लीला चल रही थी राक्षसों को खत्म करने की। किसी को कोई ऐसा दुख ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब लीला का हिस्सा है, भगवान के प्लान का हिस्सा है। ओके, कस्तूरी माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने हाथ उठाए।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस,
मेरा प्रश्न ये है कि सभी, एक जनरल क्वेश्चन है, इट इज The people, what the people say is by the Tulsi Ramayan जो है ना रामचरित मानस उससे ही राम को भगवान माना शुरू हुआ. उससे पहले कोई राम को भगवान नहीं मानता था वैसे लोग बोलते हैं.
okay.
उसके लिए बिफोर दैट ओनली वी हैव अदर टेक्स्ट लाइक रामायण फ्रॉम आलवार एंड ऑल. इवन दो देर इज like this n number of evidence that Rama is Bhagwan, why do people say it from the like this and all? It's just a king, ordinary king and all.
Yeah, so what is the question to
my question is that how to reboot this, I mean protect ourselves from these things.
Yeah, actually we need to see everything in the light of the scripture. It's not that before Tulsidas nobody says that Lord Ram is there. Brahma Samhita says, Srimad Bhagavatam says that Lord Ramchandra is the incarnation. Ramadi Murti Sukala Niyamena Tishtham Nana Avataro Makaro Dhuvanesu Kintu. Brahmaji explain it, Srimad Bhagavatam explains it, Upanishad explain it, the meaning of Ram that is given in the Upanishad. So, राम की नर लीला इस प्रकार से है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु वो हम समझ सकते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवत गीता का जो श्लोक है उसके आधार पे. कि भगवान की लीला इस प्रकार से है क्योंकि भगवान रामचंद्र मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए थे. मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनकी नर लीला थी. उन्होंने कभी ऐसा प्रकट नहीं किया कि मैं भगवान हूं. और भगवान कृष्ण ऐसे थे कि हर जगह प्रकट करते थे मैं भगवान हूं, क्योंकि वो उसी लीला भगवत्ता को स्थापित करने के लिए आए थे. भगवान रामचंद्र कभी प्रकट नहीं करते थे. जैसे भगवान रामचंद्र जब जंगल में जाते थे तो उनके 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 पैरों में कांटे भी चुभते थे, वो भी डिस्क्रिप्शन आता है. इस प्रकार से लीला करते थे. और जैसे हमने एक और डिस्कस किया था कि पार्वती जी कंफ्यूज हो गई थी. हम तो दूर की बात है, महामाया पार्वती कंफ्यूज हो गई थी कि ये व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है इतना. इसलिए वो टेस्ट करने भी आई थी पार्वती देवी. तो भगवान ने इतनी परफेक्ट नव लीला की है कि कोई समझ ही नहीं सकता है कि भगवान ये भगवान है कि नर है. तो वो ब्यूटी थी भगवान की लीला की, क्योंकि वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए थे. उनका उद्देश्य ही वही था. इसलिए कृष्ण के समय में वो बचपन से ही जब छोटे थे तभी से चमत्कार करते थे. पूतना को मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, हर जगह स्थापित करते थे कि मैं भगवान हूं. भगवान राम ने कहीं स्थापित ही नहीं किया कि वो भगवान है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं. परंतु हमें शास्त्रों से देखना चाहिए कि शास्त्र क्या बोलते हैं भगवान रामचंद्र के बारे में. ओके
ओके
एक और हाथ उठा है, योगेंद्र कपूर.
हरे कृष्ण प्रभु जी.
यस
प्रभु जी, मेरी आवाज क्लियर है?
बताइए,
मेरी आवाज क्लियर है प्रभु जी? प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, उन्होंने जब धरती पर अवतार लिया तब एज किंग क्यों लिया? मतलब उन्होंने एक राजा की तरह अवतार लिया.
किसने प्रभु जी, एक बार फिर से बोलिए.
जैसे श्री राम प्रभु हैं. प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि धरती पे जब अवतार लिया श्री राम ने या श्री कृष्ण जी ने, तब उन्होंने जब अवतार लिया एज किंग लिया, मतलब रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ, तो उसके पीछे क्या रीजन था?
उसके पीछे कारण है क्योंकि क्षत्रियों की जिम्मेदारी होती है समाज को गाइड करने की, समाज को मैनेज करने की. और क्षत्रिय जो होते हैं, जब राजा जो होते हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं. भगवान का भी लक्ष्य है कि सभी को धर्म की तरफ मोड़ा जाए. तो इसलिए भगवान के जो रोल के लिए फिट बैठता है वो क्षत्रिय फिट बैठता है, इसलिए भगवान क्षत्रिय के रूप में आते हैं. कुछ कुछ अवतार भगवान ने ब्राह्मण के जैसे भी लिए, परंतु ज्यादातर अवतार क्षत्रिय के रूप में लिए, क्योंकि वो समाज में असुरों का विनाश करना, अधर्म को खत्म करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब कुछ क्षत्रिय के लिए पॉसिबल है, इसलिए भगवान क्षत्रिय के रूप में आते हैं. ओके
ओके प्रभु जी.
ओके, एक और प्रश्न है. कृष्ण प्रभु.
हरे कृष्णा प्रभु जी.
हरे कृष्णा. यस प्रभु.
मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो रामायण में जो रावण को मारने की जो लीला की गई थी, हाँ, राम जी की, तो वो लीला करने का क्या उद्देश्य क्या था उनका, कि ये वनवास में जाके उनको रावण का दहन करना था, वो तो सिंपली जाके भी रावण का दहन कर सकते थे।
सिंपली जाके दहन कर सकते थे मतलब?
जैसे कि वो वनवास में गए थे तो मतलब वनवास से ही वो उनका रावण का मतलब पता चला था कि वो इतना बड़ा राक्षस है, इसलिए उसका करने के लिए गए थे। लेकिन वो तो भगवान थे तो वो सिंपली भी जा सकते थे कि वो इतना बड़ा राक्षस है तो उनका तो दहन करना था।
भगवान को एक्चुअली सिंपली जाने की भी जरूरत नहीं थी, भगवान रावण के हृदय में परमात्मा के जैसे हैं, वो निकल आते बाहर तो रावण मर जाता, उनको तो अवतार लेने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के जैसे हैं, एक बार निकल आएंगे तो मर जाएगा व्यक्ति। भगवान इसलिए वहां पे पूरी लीला किए जिससे कि कृष्णा द्विवेदी नाम से एक भक्त भगवान की लीला को सुन के आकर्षित हो भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम वापस चले जाए, इसलिए भगवान ने पूरी लीला की है जिससे कि हम लोग उनकी लीला से आकर्षित हों। और लीला में जितना इमोशन होता है, ड्रामा में जितना इमोशन होता है, जितना फाइटिंग होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। हम देखने जाते हैं ना रास्ते में, अगर फाइटिंग होती है तो अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं फाइटिंग देखने के लिए, तो हमें फाइटिंग अच्छा लगता है, इमोशंस अच्छे लगते हैं। तो भगवान लीला करते समय वो सब कुछ डालते हैं जिससे कि हम इस भौतिक संसार में जो फंसे हुए हैं वो भगवान की तरफ आकर्षित होकर भगवान के पास चले जाए। ओके ठीक है कृष्णा। ओके यस प्रभु कस्तूरी प्रभु।
ओके I want to check whether my understanding is correct or not, Prabhuji. I want to tell my understanding about Shri Ram's Leela. Yeah. According to what I understood is, he took as an incarnation in the royal family and left his everything, wealth and all to obey his parents to first. What I understood is to obey the parents' order.
Yeah.
The second, what I understood is, when he go to the Dandakaranya in Panchavati, he killed innumerous of demons who were bothering the rishis, like Karadushan, or unke parivaron ko, bahut unhone udham macha kar rakha tha, vesa Dandakvan mein, ki wo rakshason ke adda bane, jaise terrorist adda tha, vese hi us pe उसको नाश करने के लिए वो वहां पर गया। और कुछ ह्यूमंस को भी वैल्यू लाइफ चाहिए, इसलिए वो वैसा राम बनकर हमको क्या दिशा सही दिशा वैसे ही जीना है तपस्वी की जैसा। इज दिस माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट?
या दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। दीज आर द पर्पस ऑफ लॉर्ड राम्स इनकार्नेशन। Yes, Prabhu. Okay. Okay, then Yogendra Prabhu, again one question.
Prabhuji, मेरा प्रश्न ये है कि रामचरितमानस आज के टाइम पे पढ़ना क्या है? इस प्रिंसिपल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती है?
अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में हेल्प नहीं कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल रामायण के ही हैं, भगवान राम के चरित्र के हैं। क्योंकि कोई भी आइडियल व्यक्ति को देखते हैं, हर व्यक्ति आइडियल को तलाश करता है, करते हैं कि नहीं? हमारे मन में भी कोई ना कोई होता है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी जैसा बनूंगा, कुछ लोग अमित शाह जैसा, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जैसा, सबके कोई ना कोई आइडियल होते हैं। कोई लोग टाइगर श्रॉफ जैसा बनना चाहते हैं, कुछ शाहरुख खान जैसा बनना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति आइडियल की तलाश में है। तो रामायण हमें बताता है कि हमें कैसा आइडियल सेट करना चाहिए और उस जो व्यक्ति आइडियल है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे सोसाइटी को लाभ पहुंचाना चाहिए, कैसे समाज को सुधारना चाहिए, कैसे शांति की स्थापना करनी चाहिए, कैसे भगवत भक्ति की स्थापना करनी चाहिए, ये सब कुछ भगवान रामचंद्र का कैरेक्टर सिखाता है। तो ये मोस्ट एप्लीकेबल है। आजकल के जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीचेज हैं उसमें कोई चीज सीखने नहीं मिलता है, केवल पैसा खर्च होता है। अगर रामायण को पढ़ेंगे तो वास्तविकता में हम सीख पाएंगे चीजों को। ओके
ओके प्रभु जी, थैंक यू।
9:07 हो गया है, लास्ट क्वेश्चन। यस प्रभु अनम्यूट करिए। JNKI0W, उनका नाम नहीं लिखा है, कौन से प्रभु जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी।
माता जी नाम बताएंगे आपका?
हाँ धारा माता, धारा।
यस बताइए माता जी, प्रश्न क्या है? आपकी आवाज कट रही है बार बार।
अभी आ रही है प्रभु जी?
यस आवाज आ रही है, बताइए।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन आज के लेक्चर के ऊपर नहीं है लेकिन हाँ प्रभु जी मेरा जो क्वेश्चन है वो रामायण से है, आज के लेक्चर से नहीं है, मतलब है रामायण से रिलेटेड, तो सीता माता के ऊपर है। एक्चुअली मैं जब भी रामायण सुनती हूँ या भागवत कथा सुनती हूँ, जब ये रामायण का किस्सा आता है तो उसमें एक चीज बार बार रिपीट होती है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको जब शादी होती है तो मेन पर्पस ये होना चाहिए कि फैमिली के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जैसे इन-लॉज हैं, पति के बारे में लास्ट में आता है। जैसे सीता माता को जनक राजा ने भी यही बोला था कि राम भगवान की सेवा के बारे में बहुत लास्ट में एडवाइस दिया था, लेकिन पहले ये बोला था कि तुम अपने सास ससुर को पिता माता समान मानना ये वगैरह। तो ये भागवतम में भी मैंने सुना है तो बहुत बार ये वर्णन आया है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सीता माता को दशरथ राजा जो आत्मा के स्तर के लेवल के थे उन्होंने ये एडवाइस दिया था या फिर एक सलाह दिया था कि आपको ऐसा करना है, आज्ञा दिया था, तो फिर जब राम जी वनवास गए तो वो उनके साथ क्यों चल पड़े? मतलब उनको एक मतलब क्वीन जो सबसे बड़ी रानी थी चार बहनों चार भाइयों में, जैसे कि राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था, चलो वो नहीं हुआ, लेकिन एज बड़ी बहू होने के नाते उनका ये फर्ज नहीं था कि वो माता कौशल्य के साथ या उनके साथ रुककर उनकी सेवा करें। जैसे लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा कि मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सेवा करो माता की वगैरह, तो उर्मिला जी रुक गई, तो माता सीता क्यों नहीं, कि वो क्यों जाना जरूरी था उनका, ये पता नहीं क्यों मुझे क्वेश्चन यही आता है बार बार। आई डोंट नो आई एम वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट पता नहीं सताता है क्वेश्चन, तो मैंने सोचा पूछ।
ओके इसके बहुत सारे आंसर हैं। एक्चुअली हमने वो सेक्शन पढ़ा नहीं जब लक्ष्मण साथ में जाते हैं वो उर्मिला से मिलन करते हैं, वहां पे ये डिस्क्रिप्शन आता है रामायण में, क्योंकि हमने उसके आगे स्टार्ट किया, भरत के सेक्शन से स्टार्ट किया। एक तो समझना चाहिए कि अगर सीता माता नहीं होती तो रावण उनको किडनैप नहीं करता, तो रावण को मार नहीं पाते। एक तो हम समझ सकते हैं लीला के लिए वो हुआ क्योंकि सीता माता को जाना था, सीता माता के भाग्य में ऐसा लिखा था कि वो दो बार जंगल जाएंगे, जब बचपन में उनका भाग्य देखा गया था, हाथ को देखा गया था, बताया गया था कि इनको ये जंगल जाएंगे और ये राक्षस वंश के विनाश का कारण बनेगी, तो उनको उस तरह से बनना था, लीला में उनका ये पार्ट था कि उनको ये चीज करना था। अगर वो नहीं करती तो फिर रावण का विनाश नहीं होता, राक्षस वंश का विनाश का वो प्लान पूरा नहीं होता, तो वो तो होना ही था। और दूसरा चीज, हालांकि ये बोला जाता है कि पति के माता पिता की देखभाल करनी है, सबकी देखभाल करनी है, परंतु पत्नी का पहला धर्म होता है पति की देखभाल करना है, पति को प्रेम करना है, क्योंकि पति के माता पिता से वो कैसे कनेक्टेड है, पति के द्वारा कनेक्टेड है ना। जैसे लक्ष्मण भरत ने बोला कि मैं भी राम की प्रॉपर्टी हूँ, ये राज्य भी राम की प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से पति की जितनी भी चीजें हैं, पति से संबंधित जितने लोग हैं, सबसे पत्नी का कनेक्शन कैसे है, पति के थ्रू है। इसलिए उसका जो पहला कनेक्शन है वो पति का है, और अगर पति वहां पे नहीं है, इसलिए सीता ने बोला था कि मेरे लिए अयोध्या कोई सिटी नहीं है, मेरे लिए अयोध्या वही है जहाँ पे आप है। तो सीता के लिए जाना तो वही था, क्योंकि सीता राम के साथ जाना चाहती थी। कल भी हमने डिस्कस किया था कि लक्ष्मी जी भगवान राम नारायण के साथ समय स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो लीला पूरी हुई। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये हमारे सुमित भरत लक्ष्मण की पत्नी क्यों नहीं गई साथ में। उसका ये कारण था कि लक्ष्मण का कार्य था राम की सेवा करना, तो अगर लक्ष्मण की पत्नी जाती तो लक्ष्मण की राम और सीता के प्रति जो सेवा है उसमें अवरोध आता, क्योंकि उनको अपनी पत्नी को भी देखना पड़ता। तो लक्ष्मण की उपस्थिति, सीता की उपस्थिति राम के लिए जरूरी थी, क्योंकि सीता राम की सेवा करना चाहती थी, परंतु अगर लक्ष्मण की पत्नी होती तो लक्ष्मण जो थे वो सीता राम की सेवा नहीं कर पाते, उनको अपनी पत्नी को भी देखभाल करनी पड़ती। इसलिए उनकी पत्नी ने उनकी पति की सेवा में कोई व्यवधान नहीं आए, इसलिए वो वहां पे जाती नहीं है जंगल में। तो दोनों के दो अलग अलग कारण है। ठीक है,
थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ठीक है, कल हम 8 बजे इसके आगे डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।